Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. Is Upanishad ke tritiya prakaran mein छठवीं कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। आचार्य पिपलाद जी से कौशल्य ऋषि के अलग अलग छह प्रश्न हैं। उन छह प्रश्नों का उत्तर तृतीय प्रकरण है। पहले प्रश्न तथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। पहला प्रश्न प्राण की उत्पत्ति किससे होती है इत्याकारक था, उसका उत्तर दिया परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है ये बताकर। द्वितीय प्रश्न है कि उत्पन्न हुआ प्राण शरीर में क्यों प्रविष्ट होता है, उसका क्या निमित्त है शरीर प्रवेश का। तो शरीर प्रवेश का निमित्त बताया कर्म को, मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, इस वाक्य से। तृतीय प्रश्न था कि इस यह प्राण वर्तमान शरीर में अपने को अलग अलग विभागों में विभक्त करके कैसे अवस्थित रहता है, और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा के दृष्टांत से शुरुआत की चतुर्थ कंडिका से। तो राजा जैसे अपने राज्य की सुव्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को अलग अलग देश के विभागों में नियुक्त करता है, ऐसे ही इस शरीर में सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो अलग अलग तत्व हैं उनको अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है मुख्य प्राण, और स्वयं भी रहता है इनमें से। जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं इनका तो गोलक प्रसिद्ध ही है। शरीर में प्राण के अलग अलग पांच वृत्तियों का अलग अलग स्थान जो अप्रसिद्ध है उसे पंचम कंडिका से बताना प्रारंभ किया है आचार्य पिपलाद जी ने। जो अपान नाम की वृत्ति है प्राण की, प्राण अपने अपान नामक वृत्ति विशेष को पायु और उपस्थ में स्थापित करता है, और स्वयं प्राण नामक वृत्ति रूप जो प्राण है वह चक्षु और श्रोत्र में अवस्थित रहता है, और प्राण तथा अपान का जो स्थान बताया गया चक्षु श्रोत्र और पायु उपस्थ, इन दोनों का जो मध्य है वो है नाभि। उस नाभि स्थान में स्थित करता है समान नाम के वायु को, और ये समान नाम का वायु अलग अलग अंगों को पुष्ट करने वाला जो अन्न रस है हमारे द्वारा भुक्त अन्न तथा पीत जलादि को पाचन क्रिया के माध्यम से तीन विभागों में विभक्त कर लेता है उदरीय अग्नि, और मध्यम जो अंश होता है अन्न का उसका अन्न रस बनता है, और वह शरीर के अलग अलग अंगों को पुष्ट करता है। उसका पहले सारे अन्न रस का संग्रह होता है हृदय देश में, इसलिए कहा गया कि नाभि देशस्थ जो समान नाम का वायु है वह शरीर के सभी अंगों में अन्न रस को पहुंचाने के लिए पहले हृदय देश में ले जा करके संग्रहित करता है और वहां से फिर अलग अलग अन्न रस संवाहक जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों के माध्यम से अलग अलग अंगों में अन्न रस पहुंचता है और उसी अन्न रस से संपोषित हुए जो गोलक हैं चक्षुरादि इंद्रियों के शीर्षस्थ गोलक वो हैं सात, दो गोलक हैं श्रोत्र इंद्रिय के, दो गोलक हैं नेत्र इंद्रिय के, दो गोलक हैं घ्राण इंद्रिय के और एक है रसन इंद्रिय का और इनसे ये अपने अपने विषयों का ग्रहण अपने जो परिपुष्ट शरीर के अंग रूपी गोलक हैं उनमें स्थित होकर के चक्षुरादि इंद्रिया अपने अपने विषय रूपादि का जो ज्ञान कराती हैं वह ज्ञान माना जाता है इस उदरीय अग्नि रूप आह्वनीय अग्नि का अर्ची के तरह अर्ची यानी ज्वालाएं। तो इस प्रकार ये समान वायु अन्न रस को समान रूप से सब पहले हृदय देश में और फिर वहां से सभी देशों में पहुंचाता है ये बताया गया पंचम खंडिका में और षष्ठ खंडिका में बताया जा रहा है कि व्यान नाम का जो एक प्राण का भेद है उसका स्थान शरीर में नाड़ियां हैं और वो नाड़ियां निकलती कहां से हैं और फैलती कहां तक हैं, तो इसलिए ये हृदय में बताया गया आत्मा की उपाधि भूत अंतकरण का स्थान हृदय हेश आत्मा, इसमें आत्मा शब्द लक्षणा से आत्मा की उपाधि भूत अंतकरण का परामर्शक है और वह अंतकरण है कहा हृदय देश में और अंतकरण को यानी मन को फिर अपने गोलक से निकल करके अलग अलग इंद्रियों के गोलकों में जाना पड़ता है और उन गोलकों में स्थित इंद्रियों के माध्यम से फिर उनके विषय रूपादि तक ये मन जाता है फिर वापस आता है हृदय देश में। इसके लिए मन का सुगमता से विषय देश तक इंद्रियों के माध्यम से जाना हो सके फिर वापस अपने गोलक में आकर के वह स्थित हो सके तो मार्ग चाहिए, तो मन के विचरण के लिए मार्ग के तरह मार्ग का काम करती है नाड़ियां और वे नाड़ियां हैं मुख्य नाड़ियां तो मानी जाती हैं 101 वो निकलती है हृदय से ही और उन मुख्य 101 नाड़ियों की शाखा नाड़ियां हैं प्रत्येक नाड़ी की 100-100 ऐसे 101 नाड़ी की प्रत्येक नाड़ी की 100-100 शाखाएं होगी तो शाखा नाड़ियां होती हैं 10,100 और इन शाखा नाड़ियों की उप शाखा नाड़ियां भी हैं और इन 10,100 नाड़ियों में से प्रत्येक नाड़ी की उप शाखा नाड़ी है 72,000 एक एक नाड़ी की, ऐसे उप शाखा नाड़ियों की संख्या हो जाती है 72,72,00,000। तो ये जो उप शाखा नाड़ी और मुख्य नाड़ियां, इन सब की संख्या को जोड़ते हैं तो कुल मिलकर के मुख्य नाड़ी, शाखा नाड़ी और उपशाखा नाड़ी मिलकर के हो जाती हैं 72,72,10,201 नाड़ियां। प्रत्येक के शरीर में इतनी नाड़ियां हैं और इन नाड़ियों को माना गया इस शरीर के अंदर जो प्राण नाम का प्राण का व्यान नामक एक अवांतर भेद है, वृत्ति विशेष है, उसका स्थान। इसलिए कहा गया कि आसु व्यानश्चरति। आसु शब्द से लेना है ये शाखा नाड़िया, उपशाखा नाड़िया और प्रधान नाड़िया। इन सब नाड़ियों में विचरण करता है व्यान नाम का प्राण वृत्ति भेद। अब प्राण तो है अवांतर वृत्ति भेद को लेकर के पांच प्रकार का, उनमें से चार वृत्तियां प्राण की बताई इस शरीर में, उनका स्थान भी बताया गया। अपान का भी स्थान, अपान प्राण, समान और व्यान, ये चार प्रकार के प्राण तथा उनके स्थान इस शरीर में कौन है इनका वर्णन हुआ। पांचवा एक भेद बचा उदान नाम का वायु, उस उदान नाम के वायु का वर्णन किया जा रहा है, कार्य बताया जा रहा है तथा उसका इस शरीर में कौन स्थान है इसका भी वर्णन किया जा रहा है सप्तम कंडिका में। और ये जो उदान का वर्णन करते हुए चतुर्थ प्रश्न था उसका उत्तर भी दिया जा रहा है। चतुर्थ उत्तर प्रश्न था केन उत्क्रामते, इस शरीर से प्राण उत्क्रमण किसके द्वारा करता है, इस शरीर से निकलता है तो शरीर से निकालने वाला कौन है, किस कौन लेकर के जाता है, मृत्यु के समय किसका व्यापार इस शरीर से सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व, भूत सूक्ष्म तथा जीव को ले जाना रूप है। ये चतुर्थ प्रश्न है केन उत्क्रमते, इस इन शब्दों से इस चतुर्थ प्रश्न का भी उत्तर देना है, इसलिए उदान वायु का वर्णन किया जा रहा है। अथ एकया ऊर्ध्व उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम्। तो एकया, ये जो शब्द एकया शब्द है इसका अर्थ है जो मुख्य नाड़ियां बताई गई थी हृदय संबंधी वो कितनी है 101, और उन 101 नाड़ियों में भी जो प्रधान नाड़ी है उसे कहा जाता है एका शब्द से। एक शब्द का अर्थ प्रधान भी होता है। तो 101 जो मुख्य नाड़ियां हैं उनमें जो प्रधान नाड़ी है वो प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाम की नाड़ी। 101 नाड़ियों में प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, और उसे यहां एका शब्द से लेना। तृतीया का एक वचन है एकया नाड्या, तो उस सुषुम्ना नाम की एक ही नाड़ी से उसी नाड़ी में विचरण करता है ये उदान नाम का वायु। इसलिए ऊर्ध्व उदान, यानी ऊर्ध्वस्थन, और ये नाड़ी हृदय देश से निकल करके पैर के तल से होते हुए जाती है मूर्धा तक, इसकी व्याप्ति है। पहले हृदय से निकल करके नीचे जाती है, नीचे से फिर ऊपर आती है मूर्धा तक, इसलिए ये माना जाता है इस मुख्य प्रधान नाड़ी को आपाद तल मस्तक तक रहने वाली। आपाद कहा जाता है आपाद तल, पाद तल कहते हैं पाद का जो नीचे वाला भाग है, तलवा जिसको कहते हैं पैर का, और वहां से लेकर के मस्तक पर्यंत इसकी व्याप्ति है इस सुषुम्ना नाड़ी की। और उसी सुषुम्ना नाड़ी में वो क्या होता है कि हृदय से लेकर के फिर पैर के तलों तक और वहां से मस्तक तक ऊपर के ओर ये गमन करता रहता है निरंतर, इसकी यह ऊर्ध्व गति चलती रहती है उदान वायु की, इसलिए कहा ऊर्ध्वस्तन यानी ऊर्ध्व ऊपर के ओर जाता हुआ, पाद तल से मूर्धा के ओर जाता हुआ उसे उदान कहते हैं। और ये जो उदान वायु है इसका क्या कार्य है, तो जीवित अवस्था में खाली वो अपने इस गोलक रूप सुषुम्ना नाड़ी में कभी पाद तल से मस्तक तक और मस्तक से फिर पाद तल तक आना जाना करता रहता है, इतना ही जीवित अवस्था में उसका कार्य है। जब प्रारब्ध समाप्त होता है इस शरीर में रहने का, इस शरीर में प्रवेश प्राण ने क्यों किया है, उसका निमित्त क्या है, तो निमित्त बताया था मनोकृत शब्द से कर्म को, प्रारब्ध को, तो प्रारब्ध ही प्राण को शरीर में प्रविष्ट करता है, और वो प्रारब्ध अपना फलोपभोग जब तक कराना होता है तब तक प्राण और सूक्ष्म शरीर अंतपाती बाकी सारे तत्व चक्षुरादि इंद्रिया उनके अनुग्राहक देवता इन सब को इस शरीर में अवस्थित रखता है। अवस्थिति का निमित्त बनता है कौन, उदान नहीं, ये प्रारब्ध कर्म। उदान तो जीवित अवस्था में कुछ कार्य नहीं करता, अपना शांत रहता, उसका कार्य खाली है जब इस शरीर में रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हो जाए और फिर शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जीव तैयार हो जाए, इस शरीर से निकल जाए। निकलना है तो उसको ले करके इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट करना, इतना मात्र इसका व्यापार है, यही काम करना है उसको। जब तक प्रारब्ध का फलोपभोग नहीं होता तब तक आराम करता रहता है, उसे कुछ भी काम नहीं होता जीवित अवस्था में। तो ये प्रारब्ध जब भोग करके समाप्त होता है तब यह बाह्य इंद्रियां अपने अपने गोलकों में जो स्थित है वो किस लिए स्थित है कि इस शरीर में आए हुए जीवात्मा को उसके प्रारब्ध का फलोपभोग जिन विषयों के माध्यम से करना है उन विषयों को ला करके जीवात्मा तक पहुंचा देती है इंद्रिया, यानी प्रारब्ध भोग में सहयोग करती है। और इंद्रिया तभी अपने अपने विषयों का ग्रहण कर पाती है जब ये उनको प्राण की जो अलग अलग पांच वृत्तियां बताई इंद्रियों के गोलकों में स्थित उनमें से चार प्राण वृत्तियों का अनुग्रह प्राप्त होता है। प्राण परिस्पंदन करता रहता है, तभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को जीव का प्रारब्ध भोग हो जाए ऐसे उपयोगी विषयों को ला करके पहुंचाती है जीवात्मा तक। और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाए भोग करके, तो ये इंद्रियों का फिर इस शरीर के गोलकों में रहना आवश्यक नहीं रहा। उद्देश्य जो था प्रारब्ध का फलोपभोग कराना, वह उद्देश्य पूर्ण हुआ, प्रारब्ध पूरा हुआ, तो इंद्रियां फिर अपने अपने गोलकों से निकल जाती है। उनके अनुग्राहक देवता अंश अपने अपने जो अंशी हैं उसमें जाकर के मिल जाते हैं, और इंद्रियां मन में आकर के संलग्न हो जाती है। और मन का स्थान क्या है? हृदय। हृदय ऐसा आत्मा, इससे बताया गया। तो बाह्य इंद्रियों के गोलकों में से इंद्रियों का उत्क्रमण हो गया, यानी निकल गई। और जो जो इंद्रिय निकलती हैं बाह्य गोलकों से, तो उन इंद्रियों का व्यापार फिर हमेशा के लिए इस शरीर में बंद होता है। जब वाग इंद्रिय अपने गोलक जिह्वा से उत्क्रमण करके मन में मिल जाएगी जा करके, तो फिर इस शरीर में कभी भी एक शब्द का उच्चारण भी वाग इंद्रिय नहीं कर पाएगी, क्योंकि गोलक में अभी है ही नहीं। जब गोलक में रहती है तभी इंद्रिय अपना व्यापार कर पाती है। नेत्र इंद्रिय जब चक्षु रूपी अपने गोलक से निकल जाता है, तो सामने कितने भी प्रियजन खड़े हो लेकिन वह उनको देख नहीं पाएगा, इसलिए कि चक्षु इंद्रिय निकल गई वहां से। तो देखना तो नेत्र इंद्रिय का काम था, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय श्रोत्र का गोलक कर्ण सस्कुल से निकल करके हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, मन में जाता है, तो फिर कान में कितने भी जोर जोर से सामने वाले व्यक्ति के, मरने वाले व्यक्ति के आप कुछ बोलना चाहो बोलते रहो लेकिन वो सुनेगा नहीं और उत्तर भी नहीं दे पाएगा। ऐसे सारे बाह्य इंद्रियों का उत्क्रमण हो जाता है, तब बाह्य व्यापार बंद, प्रारब्ध समाप्त हुआ तो। लेकिन मन कुछ समय के लिए रहता है अपने गोलक में, उसका गोलक है हृदय, तो अंदर ही अंदर मन फिर वो सोचेगा। क्या सोचेगा? तो ईश्वर उसे उसके संचित कर्म और वर्तमान जो क्रियमान कर्म है इन सारे कर्मों को दिखा देता है और बताता है कि ये तुम्हारे किए हुए कर्म हैं, इनमें से तुम चुन लो कि कौन से कर्मों का फल तुम्हें इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर से भोगना है, निश्चित कर लो। वो सारे कर्म दिखा देते हैं ईश्वर, मन को दिखा देते हैं, मन ही तो निर्धारण करता है, मन कर लेता है। मन का व्यापार उस समय रहता है, अंतकरण है ना, बाह्य इंद्रियों के व्यापार शांत हो गए, मन का व्यापार चल रहा है इसी शरीर में। और सारे कर्मों की रील ईश्वर दिखा देते हैं, वो देख लेता है पूरी फिल्म। उनमें से इस जन्म के कर्म भी अभी जो किए थे और पहले अनेकों जन्मों से किए हुए जो कर्म हैं जिनका फलोपभोग नहीं कर पाए, संचित जिसको कहा जाता है, उन दोनों को मिला करके एक फिल्म होती है और दिखा देता है दोनों को मिला करके। फिर इनमें से जिनको याद रखता है मन देख करके कि ये कर्म मैंने किए हैं, इनका फल भोगना है भावी शरीर से, ऐसा निश्चित कर लेता है, तो जितने वो सारे कर्म देखने के बाद याद रह गए उसको माना जाता है कि जीवात्मा उन्हीं कर्मों का फलोपभोग करना चाहता है।